تکفیری آتنکواد۔
प्रिय श्रोताओ, तकफीरी आतंकवाद की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है। मरियम मेहरदादी और सैयद मिसम का सलाम स्वीकार कीजिए।
आपको याद होगा कि इससे पहले हमने दो कार्यक्रमों में इब्ने तैमिया के जीवन और उसके विचारों की चर्चा की थी। इसी प्रकार पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पवित्र परिजनों, विशेषकर हजरत अली अलैहिस्सलाम के प्रति इब्ने तैमिया जो शत्रुता रखता है, उसकी ओर संकेत किया गया। आज भी हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
हजरत अली अलैहिस्सलाम और पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों के स्थान के बारे में बहुत अधिक सही और ऐसी रवायतें मौजूद हैं जिनकी शिया सुन्नी बड़े बड़े विद्वानों ने पुष्टि की है। इब्ने तैमिया का सारा प्रयास इन सभी सही रिवायतों की अनदेखी करना और पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों से अपनी शत्रुता को सिद्ध करना था। इब्ने तैमिया हज़रत अली अलैहिस्सलाम से इस सीमा तक शत्रुता रखता था कि उसने अपनी किताबों में मुआविया और उसके बेटे यजीद की प्रशंसा की है। वो यजीद जिसने करबला में पैगंबर इस्लाम के प्राण प्रिय नाती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके परिवार के सदस्यों और उनके साथियों को भूखा प्यासा शहीद किया और उनके परिजनों को बंदी बनाया।
इब्ने तैमिया अपनी एक किताब में दावा करता है कि यद्यपि यजीद ने पाप किया है, परंतु उसने जो अच्छे कार्य अंजाम दिए हैं उसके कारण उसके पाप माफ कर दिए गए हैं। इसी प्रकार वो हजरत अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में मुआविया की प्रशंसा और उसकी वकालत इस प्रकार करता है जिससे न्याय प्रेमी इंसान हतप्रभ रह जाता है। मुआविया के बारे में उसके समय के मिस्री विद्वान हसन बसरी कहते हैं, मुआविया के अंदर चार विशेषताएं थीं, जिनमें से एक विशेषता का होना भी उसकी बर्बादी के लिए काफ़ी था। पहली बात तो ये थी कि मुआविया परिषद के गठन के बिना और तलवार के बल पर इस्लामी राष्ट्र का शासक बन गया, जबकि सद्गुणों से सुसज्जित पैगंबर इस्लाम के साथी लोगों के मध्य मौजूद थे। ज़ियाद इब्ने अभी अवैध संबंध से दुनिया में आया था और ये ज्ञात नहीं है कि उसका पिता कौन था। फिर भी मुआविया ने उसे अपने बाप अबू सुफियान का बेटा और उसे अपना भाई बताया। तीसरी बात ये थी कि उसने अपनी मर्जी से सत्ता की बागडोर अपने उस दुष्ट पुत्र यजीद के हवाले कर दी जो शराब पीता था, रेशम का कपड़ा पहनता था और वाद यंत्र बजाता था। चौथी बात यह थी कि हुजर बिन अदी और उनके साथियों की हत्या कर दी।
इब्ने तैमिया इसी प्रकार रासुल हुसैन नामक किताब में यजीद का बचाव कर रहा है। समस्त मुसलमान उसके धर्म भ्रष्ट होने के बारे में एकमत हैं और उसने जो कृत्य अंजाम दिए हैं वे बहुत ही लज्जाजनक हैं। उसने अपने कुछ ही वर्षों के शासनकाल में पैगंबर इस्लाम के प्राण प्रिय नाती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, काबे में आग लगाई, उसे बर्बाद किया और हुर्रा नामक घटना में पवित्र नगर मदीना के लोगों की जान माल और महिलाओं को अपने सैनिकों के लिए वैध करार दिया। इब्ने तैमिया यजीद के बारे में भी कहता है, यजीद का पाप बनी इसराइल के पाप से अधिक नहीं था। बनी इसराइल अपने पैगंबरों की हत्या करते थे और हुसैन की हत्या भी पैगंबरों की हत्या से बड़ा पाप नहीं था।
इब्ने तैमिया ने इस प्रकार लज्जाजनक चाल से खून से रंगे यजीद के हाथों को उसके समस्त बुरे कृत्यों से पवित्र दिखाने की चेष्टा की है। हुर्रा की घटना में पैगंबर इस्लाम के बहुत से साथी यजीद के सैनिकों के हाथों शहीद हो गए और 1000 कुंवारी लड़कियों से बलात्कार किया गया। इब्ने तैमिया के अनुसार ये सब पाप क्षमा कर दिए जाएंगे और उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। वो यजीद की ओर से वकालत करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का औचित्य इस प्रकार पेश करता है। वो कहता है, इमाम हुसैन ने खुरूज किया यानी यजीद के विरोध में आवाज़ उठाई और निकल पड़े, इसलिए उनकी हत्या वैध और उनके खून की जिम्मेदारी स्वयं उन पर है। विचित्र बात यह है कि पैगंबर इस्लाम की पावन समाधि का दर्शन करने या उन्हें माध्यम बनाकर दुआ मांगने वालों को इब्ने तैमिया काफिर कहता है, जबकि यजीद जैसे धर्म भ्रष्ट इंसान को मुसलमान कहता है और उसे बुरे कृत्यों से पवित्र समझता है। इसके मुकाबले में वो हजरत अली अलैहिस्सलाम के सद्गुणों की अनदेखी करता है और उनका परिचय सत्ता के भूखे व्यक्ति के रूप में करता है, और इस मार्ग में वो हदीस की ओर अपने झुकाव की अनदेखी कर देता है।
मुआविया और यजीद जैसे व्यक्तियों को इस प्रकार समर्थन और उसके मुकाबले में हज़रत अली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे महान हस्तियों के स्थान को कम करके दिखाना इब्ने तैमिया के विचारों के परिप्रेक्ष्य में ही संभव है। अगर मुआविया के सत्ताकाल में पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों विशेषकर हज़रत अली की निंदा व आलोचना में हदीसें गढ़ी जाती थीं, तो इब्ने तैमिया के विचारों में सही हदीसों को कमज़ोर और कमज़ोर हदीसों को सही करके पेश करना उसी रास्ते का जारी रहना है। अगर मुआविया के सत्ताकाल में मिंबरों से हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा जाता था, तो उसके बाद वैसे हालात न होने के कारण इब्ने तैमिया की किताबों और उसके विचारों में पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों के स्थानों को यथासंभव कम करने का प्रयास किया जाता है।
इब्ने तैमिया को पहचानने का सबसे अच्छा मानदंड पैगंबर इस्लाम का वो कथन है जिसमें उन्होंने फरमाया है, हे अली, तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा किंतु मोमिन, और तुमसे दुश्मनी नहीं करेगा किंतु मिथ्याचारी। इस्लामी आस्थाओं में संदेह जताने और उन्हें चुनौती देने के बाद सन 728 हिजरी कमरी में लंबी बीमारी के पश्चात इब्ने तैमिया दमिश्क की जेल में मर गया। सलफीवाद को अस्तित्व देने का मुख्य स्रोत इब्ने तैमिया के भ्रष्ट विचार हैं। इसके विपरीत की सलफी और वहाबी ये बताने का प्रयास करते हैं कि उनके विचारों का स्रोत अहमद बिन हम्बल हैं, किंतु वास्तविकता ये है कि उनके विचारों का स्रोत इब्ने तैमिया के ही विचार हैं, जो अहमद बिन हम्बल के विचारों से बहुत दूर हैं।
इब्ने तैमिया यद्यपि हदीसों के संबंध में अहमद बिन हम्बल के अनुसरण का दावा करता था, किंतु वो हदीसों को हथकंडे के रूप में प्रयोग करता था और वो हर उस हदीस की पुष्टि करता था जो उसके विचारों के अनुरूप होती थी, चाहे वो हदीस विश्वसनीयता की दृष्टि से कितनी ही कमज़ोर क्यों न हो। उसी प्रकार वो हर उस हदीस का विरोध करता था जो उसकी विचारधारा के अनुरूप नहीं होती थी, चाहे विश्वसनीयता की दृष्टि से सही क्यों ना हो, किंतु वो उसे झूठी हदीस कहता था।
इब्ने तैमिया की विचारधारा का आधार वास्तव में उमावी इस्लाम था। ये वही चीज थी जिसका प्रचार प्रसार शाम में उमावी शासक किया करते थे। इब्ने तैमिया द्वारा अबू सुफियान का समर्थन और उमावी शासकों के बुरे कृत्यों का औचित्य दर्शाना, साथ ही पैगम्बर इस्लाम विशेषकर हजरत अली के महत्व को घटाना और उनका विरोध यह दर्शाता है कि उसके इस्लाम का आधार उमवी इस्लाम था, जबकि अहमद बिन हम्बल न केवल पैगंबर इस्लाम को मानते थे बल्कि तरबी की विचारधारा का भी प्रचार करते थे। सुन्नी मुसलमानों की विचारधारा के अनुसार तरबी का अर्थ हजरत अली अलैहिस्सलाम को चौथा खलीफा मानना है।
इब्ने तैमिया ने इस्लाम के समस्त संप्रदायों का विरोध किया और अपनी भ्रष्ट विचारधारा के माध्यम से मुसलमानों के बीच उस समय मतभेद और मिथ्याचार के बीच बोए जब उनको एकता की नितांत आवश्यकता थी, जबकि अहमद बिन हम्बल के काल में सुन्नी मुसलमानों के बीच जो आस्थाएं प्रचलित थीं उन्होंने उनका समर्थन किया और उनके बीच संयुक्त आधार रखा। कुल मिलाकर इब्ने तैमिया ने आस्था में अतिवादी विचारधारा की बुनियाद रखी, जिसके प्रभाव 12वीं शताब्दी में मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के निमंत्रण के रूप में सामने आए। इब्ने तैमिया के जो भ्रष्ट विचार थे वे वहाबी विचारधारा में अधिक उग्र हो गए। अगर इब्ने तैमिया के काल में मुसलमानों को जो काफिर कहा जाता था यदि वो केवल एक विचारधारा तक सीमित था, तो अब्दुल वहाब के काल में ये सोच व्यवहारिक रूप धारण कर गई और काफिर कहकर बहुत से मुसलमानों का खून बहाया गया। यद्यपि इब्ने तैमिया मुसलमानों के बीच मतभेद फैलाने में विशेष रूप से सफल नहीं रहा, किंतु मोहम्मद बिन वहाब इब्ने तैमिया के फूट डालने वाले विचारों की सहायता, आले सऊद की तलवार और ब्रिटेन के समर्थन से मुसलमानों के बीच मतभेद के बीज बोने में सफल रहा।
इस प्रकार उसने इस्लामी जगत को बहुत ही गंभीर समस्याओं में फंसा दिया। 7वीं शताब्दी में इब्ने तैमिया ने सलफीवाद की जिस विचारधारा की बुनियाद रखी थी वो उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गई। यद्यपि उसके शिष्यों ने उसे जारी रखने का प्रयास किया, किंतु 12वीं शताब्दी में वही विचारधारा वहाबियत के रूप में सामने आई। वहाबियत का नाम इसके जनक मोहम्मद इब्ने वहाब के नाम पर रखा गया। उसने ब्रिटेन की सहायता और राजनीतिक शक्ति से ऐसी सरकार का गठन किया जिसका आधार सलफीवाद था। उसने तलवार के बल पर भ्रष्ट विचारधारा को नजद और हिजाज के क्षेत्रों में फैलाया।